अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तव नयमा।
फर्स्ट ऑफ ऑल माय heartly obeisances in the Lord's feet of my Paramaradhyatam Guru Pad Padma Nitya Leela Pravestam Vishnu Pad Astotar Sarsimad Bhakti Pragyan Kesav Goswami and same in the Lord's feet of my Siksha Guru Nitya Leela Pravestam Vishnu Pad Astotar Sarsimad Bhakti Vedan Swami Maharaj. My dear Sannyasi, Brahmachari, Vaishnav, Vaishnavi and Sajjanagar, कल तक हम लोगों ने श्रीमद् भागवत के आठवें स्कंद तक कथा श्रवण की थी। इसके बाद में परीक्षित महाराज जी ने पूछा, विष्णु यू शुड कम हियर and or from there you should translate. Today I will him speak Hindi. One day, only half an hour.
Oh, Kashi, you are speaking Hindi.
No heart. Vishnu will explain. All devotees once also. परीक्षित महाराज ने पूछा, मैं सूर्य वंश के राजाओं का जीवन चरित्र जानना चाहता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, सूर्य वंश में इक्ष्वाकु राजा हुए और उनके वंश में महाराज दशरथ हुए। उनके चार लड़के हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी। गुरुकुल में वशिष्ठ के यहां पढ़े, कुछ बड़े होने पर विश्वामित्र के साथ में तपोवन में गए और वहां से जनकपुरी में उनका सीता जी से विवाह हुआ और वहां से फिर अयोध्या लौटे। अयोध्या में महाराज दशरथ ने उनको राज्य देना चाहा राम को, किंतु कैकेयी ने बाधा दी और राम का वनवास 14 वर्ष के लिए और भरत को राज्य ये दिलाया। रामचंद्र जी सीता जी लक्ष्मण और सीता को लेकर वन में गए। रावण ने सीता की चोरी कर ली और रामचंद्र जी ने हनुमान की सहायता से पता लगाकर समुद्र के ऊपर में पुल बांधा और उस पार जाकर रावण को सबंस ध्वंस करके सीता को लेकर के अयोध्या में आए। ये संक्षेप में रामायणम। इसमें एक बात है, इसमें माता कैकेयी का चरित्र महान है। उन्होंने जो त्याग किया, किसी ने त्याग नहीं किया, भरत जी ने भी नहीं त्याग किया। आप लोग जानते होंगे महाराज दशरथ
अपने युवावस्था को पार करने के बाद में परिणत वयस में शिकार खेलने के लिए गए और शिकार करते करते कैकेयी देश के निकट जाते हुए संध्या हो गई। सोचा जी आज तो रात हो गई, आज पासी में कहीं ठहरना चाहिए। वह अपने मित्र कैकेयी देश के राजा कैकेयी से के पास में गए। उन्होंने उनका बड़ा आदर जत्न किया और अपने भवन में ठहराया और अपनी युवती कन्या कैकेयी को उनकी सेवा परिचर्या में लगा दिया। कैकेयी ने प्राण भर कर उनकी सेवा ऐसे की जी राजा महाराज दशरथ मुग्ध हो गए। दूसरे दिन सूर्योदय के बाद में जब अपने राज्य को लौटने लगे तो महाराज कैकेयी के पास में गए और बोले जब मैं बहुत प्रसन्न हूं आपके अतिथि सेवा से और आपकी बेटी ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं और भी प्रसन्न हूं। आप यदि हमारे ऊपर में प्रसन्न हो, हमारे मित्र हैं, तो अपनी बेटी कैकेयी को हमारे हमें दे दीजिए, मुझसे विवाह करके रहेगी। कैकेयी ने कहा जे नहीं, ये संभव पर नहीं है। महाराज दशरथ ने पूछा क्यों? मेरे रूप में गुण में राज्य में कमी है? नहीं, ये तो बात ठीक है, किंतु आपकी तो और बहुत सी रानियां हैं, उनमें बड़ी कौशल्या है, उनका जो पुत्र होगा वही राजा होगा महाराज दशरथ के बाद में। मैं ऐसे नहीं करूंगा, मेरी बेटी से जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, ऐसा कोई प्रतिज्ञा करके विवाह करे तो मैं विवाह दूंगा। महाराज दशरथ हंसने लगे, मुझे तो 360 रानियां हैं किंतु मुझे पुत्र नहीं है। यदि बाई चांस कैकेयी से ही पुत्र हो गया तो वह अकेला राजा होगा ही, इसमें संदेह की क्या बात है। उन्होंने कह बहुत खुशी की बात है, यदि कैकेयी से पुत्र होगा वही राज्य का अधिकारी बनेगा। लो थोड़ा सा बोल दो।
ओम ज्ञानति मेरन्धस्य ज्ञानार्जना शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सो श्री गुरुदेव इज एक्सप्लेनिंग दैट यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड द 8th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम। देन आफ्टर दैट महाराज परीक्षित आस्क्ड सुखदेव गोस्वामी, सो फार यू हैव एक्सप्लेन मी सो मेनी कथास, बट नाउ आई वॉन्ट टू हियर द पास टाइम्स ऑफ द किंग ऑफ सूर्यवंश, the Sun Dynasty. So, Shukdev Goswami started explaining that in this Surya Vansha of the Sun Dynasty, Maharaj Ikshvaku appeared and his son was Maharaj Dashrath. And he had four sons, Ram, Bharat, Lakshman and Shatrughna. They went, as they grew older, they went to the Gurukul of Guru Vashish, where they studied. And after that, with Vishwamitra, they went to Tapovan. There they killed some demons, after which he took them to Janakpuri, where in the swayamvar of Sita Devi they were married. He was married to Sita Ji. They came back to Ayodhya and Maharaj Dashrath wanted to give his throne to Lord Ram. But at that time, Kakai created some obstacles and asked that Sri Ram be banished to the forest for 14 years and the kingdom be given to Bharat. So, as a result, Sri Ram along with Sita and Lakshman, they went to the forest where finally Ravan stole Sita and took her to Lanka. Then they sent Hanuman and so many other monkeys, and Hanuman found out where Sita ji was, and then with the help of this huge army of monkeys, Lord Ram built a bridge over the ocean and then went to Lanka, completely vanquished and killed Ravan, and then came back to Ayodhya. So Gurudev said this was Ramayana in brief. So he said, but there is a very important tattva to understand here, that the charitra of Queen Kakai, Mother Kakai, is very, very great. In the whole Ramayana, no one did so much sacrifice as Queen Kakai. When Maharaj Dasharatha was a young man, that time in a concealed form, he went forth to the forest for hunting. And then it became very dark, it started getting darker. He was far from his kingdom, so he decided that he should stay close by. So that was the kingdom of Maharaj Kakai. So he went there, and Maharaj Kakai, the father of Prince Kakai, was his friend, and he kept him with great honor and asked his daughter, Prince Kakai, to take care of the king. And she, with her whole heart and soul and life, served him. So Maharaj Dasharatha was very pleased with this. Next day in the morning, when the sun was rising, he went to Maharaj Kakai to ask his permission to leave. And at that time he said that I am very pleased by your sada satkar, by your hospitality, and especially by all the service that your daughter has rendered to me. So he inquired from him that is it possible that you can give me your daughter in marriage? So Maharaj Kakai said, no, that is not possible. So he said, why? Am I not very handsome? Don't I have qualities, or don't I have a big kingdom? So Maharaj Kakai said, no, that is not the case, but you have so many queens, and you have your eldest queen is Kaushalya, and her son is going to become the king. But I want that son of my daughter should become the king. At that time, Maharaj Dasharatha submitted that I have 360 queens, and I have no son. And if Kakai begets a son, then he certainly is going to become the king. So on the insistence of Maharaj Kakai, he agreed that the son of Kakai will become the king.
इसके बाद में कुछ दिनों के बाद देवता लोग महाराज दशरथ के पास में आए और बोले ये देवासुर संग्राम चल रहा है, देवता और असुर लोग लड़ रहे हैं, आप हमारे पक्ष से सेनापति होकर के आप हमारी रक्षा करें। महाराज दशरथ सुन करके कैकेयी को साथ लेकर के स्वर्ग में गए और वहाँ पर दानवों के साथ में युद्ध आरंभ किया, और उस समय में युद्ध के अंतिम समय में उनके रथ का की धुरी टूट गई। कैकेयी झट रथ से कूदकर और उसकी धुरी को पकड़ करके उठा दिया, और महाराज दशरथ उस युद्ध में विजयी हुए। महाराज दशरथ बोले बड़ी प्रसन्न हो करके, कैकेयी तुमने हमारी रक्षा की और हमारी जीत भी कराई, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तुम दो बार मांगो, क्योंकि हमारी रक्षा की एक बार और जो हमारी विजय कराई इसलिए दूसरा बार तुम दो बार मांगो। नहीं, आप हमारे पति हैं, आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, हम क्या बार मांगे, हमको कोई बार की जरूरत नहीं है। महाराज फिर भी तुम कुछ मांगो, तुमने अच्छा भविष्यत के लिए मैं रखता हूँ, जब इच्छा होगी आपसे दो बार ले लेंगे, याद रखेंगे। वहां से देवासुरु संग्राम खत्म हो जाने के बाद में अयोध्या में लौट आए। जब अयोध्या में लौट आए तो रामचंद्र जी जनकपुर में गए थे, उनकी शादी होने के पहले रामचंद्र जी एक बार कैकेयी के पास में गए, माता कैकेयी के पास में। कैकेयी जी उन्हें भरत अपने पुत्र की अपेक्षा भी अधिक, राम को अधिक प्यार करती थी। रामचंद्र जी उसकी गोदी में बैठ गए, बोले जी मैया तुम हमको प्यार करती हो तो जरूर प्यार करती हूं, तो प्यार करती हो तो हमें एक चीज दे सकती हो? चीज तो बहुत कठिन है, देना बहुत कठिन है, किंतु मैं तुमसे मांगना चाहता हूं, कोई हमारा प्राण भी तुम चाहो तो हम दे सकती हैं, और की तो बात क्या, तुम कुछ भी मांग लो। रामचंद्र जी ने कहा, जे मैया मैं ये चाहता हूं, महाराज दशरथ जब हमको राज्य देने लगे तो तुम बाधा देना, और बाधा दे करके मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज्य गद्दी ये मांग लेना। तो सुनकर के वो डर गई, बोले जी ये तो मुझे विष पीना है। राम तुम क्या हमें विष पिलाना चाहते हो? भैया इसीलिए पहले मैंने कहा था काज कठिन है, वो देना संभव है, फिर भी यदि तुम दो तो अच्छा है, यदि तुम नहीं देगी तो हमारे जगत में आने का जो काम है, असुरों का संहार और भक्तों की रक्षा, ऋषि महर्षियों की रक्षा, ये नहीं होगी, इसलिए ये विष का घूंट तुम्हें पीना पड़ेगा। मैया आखिर क्या करती, अच्छा ये वो मस्त हूं, मैं ऐसा ही करूंगी। देखो कितना महान, जिसको सबसे अधिक प्यार करती है उनके लिए विष का घूंट भी पी लिया, ये कहते हैं प्यार। इसके बाद में महाराज जनक जी, दशरथ जी रामचंद्र जी को गद्दी देने के लिए निश्चित किया। वशिष्ठ से पूछे, ये कब मुहूर्त है? कल ही मुहूर्त है, और सारी प्रजा राम को राजा बनाना चाहती है, तो ठीक है कल मुहूर्त है, आज सारी व्यवस्था अभिषेक की जाए, सातों समुद्रों से पानी और तीर्थों से पानी और जो चीज की जरूरत है वो सारे चीज संग्रह हो गए, और कल ही राजा उनको युवराज पद देना है। सभा में उन्होंने अनाउंस कर दिया, महाराज दशरथ ने, कल राम को युवराज पद दिया जाएगा, आप लोग सभी लोग उत्सव देखने के लिए आएंगे। इतने में वहां पर उसके कैकई की दासी मंथरा नाम की एक दासी थी, वो वहां पर पहुंची कैकई के पास में और बोली, अरे कल रामचंद्र जुआ वो जो राज बनेगा और भरत उसका दास बनेगा, तुम उसकी दासी बनेगी, कौशल्या की सेवा करना, तुम इस राजा के बात को उलाट दो। वो बड़ी प्रसन्न होकर के अपने गले का हार मंथरा के गले में डाल दिया। अरे तो बड़ी खुशखबरी सुनाई, ये कल रामचंद्र का जो राजपद मिलेगा, वो भूल गई थी राम की बात। इसके बाद में कहे, अरे तू दुर्बुद्धि, मैं बचपन से तुम्हें जानती हूं, तू बड़ी मूर्ख है, अभी समय है और नहीं तो फिर समय नहीं मिलेगा, फिर तो जीवन भर तक कौशल्या की दासी होकर के रहना। इस प्रकार से बहुत बातें बता करके और कैकई का मन फिरा दिया। कैकई को भी याद आई, राम ने भी हमसे यही वर मांगा था, ठीक है ये विष का घूंट किसी न किसी प्रकार से पीना ही है। वो उठ करके कोप भवन में चली गई और वहां जाकर के अपने सारे कपड़े लत्ते अच्छे दूर करके गंदे गंदे कपड़े पहन लिए, अलंकार हटा दिया और रोने लगी। महाराज दशरथ उसी रात में जबकि आए उसे मिलने के लिए और ये खुशखबरी सुनाने के लिए, राजा रामचंद्र जी को राज्य पद दिया जाएगा ये बतलाने के लिए, बड़े आनंदित होकर के उसके घर में आए। देखा जी तो घर में है नहीं, पूछा दासियों ने कहा ये तो कोप भवन में गई हुई है। वहां गए देखा तो ये तो बड़ी विचित्र अवस्था में पड़ी हुई है, अलंकार भी नहीं है, पुराने गंदे फटे पुराने कपड़े पड़े हैं। महाराज दशरथ ने वहां गए, अरे कैकई तू इस अवस्था में क्यों है, आज बड़े आनंद की बात है और तुम यहां कोभवन में किस लिए? तो आनंद की बात आपके लिए होगी, हमारे लिए तो आनंद की बात नहीं निरानंद की बात है। मैं नहीं चाहती कि राजा रामचंद्र राज्य पद पर बैठे और मैं चाहती हूं भरत गद्दी पर बैठे। आप ऐसा यदि कीजिए तो मैं उठ करके बैठेंगे, नहीं तो हम अपने प्राण छोड़ देंगे। महाराज दशरथ ने बड़े चिंतित हो गए, आंखों में आंसू आ गए, सब धरा का धरा रह गया। सारी व्यवस्था विषय की गई थी, ये वैसे ही रह जाएगा, राम को कल वन में जाना पड़ेगा। चिंता करते करते व्याकुल हो गए। कैकेयी को बहुत तरह से समझाया किंतु माने नहीं, पैर भी पकड़ा तो भी नहीं मानी। राजा निराश हो गए। रात में ही कुछ रात बीतने पर राजा तो बेहोश होकर के गिर गए। रानी ने दासी से कहा, जाओ राम को बुला लाओ। उधर रामचंद्र जी कौशल्या के पास में प्रणाम करने के लिए, कल हमको युवराज पद दे रहे हैं राजा, बड़ी खुशी होकर के आरती उतारी। आरती की थाल गिर गई, कहे ये तो अमंगल की बात है। सीता जी के पास में भी गए, तुम तैयार रहना, खाना पीना मत, कल सवेरे स्नान करके अमृत स्नान करके और राजगद्दी पर बैठना है। इतने में दासी आई, बोली ये युवराज आपको महाराज बुला रहे हैं। कहाँ हैं? कैकेयी के पास में है। रामचंद्र जी वहां पर गए, देखा जे पिताजी तो रो रो तो कर करके और बेहोश हो गए हैं। मैया से पूछा, माँ महाराज पिताजी ऐसे किस स्थिति में पड़े हुए, क्या बात है? कुछ नहीं, बात है कि उन्होंने कहा था दो बार मांगने के लिए, हमने दो बार मांगा। मैंने मांगा कि 14 वर्ष के लिए तुम्हारा कल वनवास हो, कल ही के दिन, और भरत कल ही राजगद्दी पर बैठे। भरत उस समय थे नहीं, ननिहाल गए थे। इतनी सी बात के लिए कैकेयी ने कहा कि तुमको यदि राज ही देना था तो भरत यहां था तब क्यों नहीं दिया? इसलिए षड्यंत्र तुम कर करके रामचंद्र जी को देना चाहते हो। याद है तुम्हें हमारे पिता के यहां प्रतिज्ञा की थी, याद है तुम्हें जो दो वर देंगे? महाराज दशरथ प्रसन्न रह गए। तो रामचंद्र जी ने पूछा, तब उसने बतलाया, हमने इन्होंने से कहा था जे वर मांगो, हमने वर मांगा, वर मांगा कि पहले मैं तुम्हारा 14 वर्ष के लिए वनवास और दूसरा भरत को राजगद्दी। रामचंद्र जी बोले, जी ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पहले सोचा करता था मैं पिताजी के 4 बेटे एक ही साथ में बड़े हुए, सब कुछ हुआ और मैं राजा बनूंगा और ये दूसरे राजा नहीं बनेंगे। मैं तो चाहता था ये सभी राजा बने, तो आज तो सौभाग्यवश भरत को राज्य मिल गया और मैं जंगल में जाऊंगा, कोई बात नहीं। बड़े आनंदित होकर के उनके आदेश को मांगा। रामचंद्र जी जब वन में जाने लगे तो कैकेयी ने उनको जैसे वनवासियों का वेश होता है ऐसा वेश उनको बना दिया। कैकेयी इतनी उस समय निष्ठुर बन गई कि सीता जी को भी चीर बसन पहनवाया। रामचंद्र जी तो बन चले गए। इस तरह से रामचंद्र जी के बन जाने के बाद में महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। हा राम बस समाप्त। भरत भी नहीं है, लक्ष्मण भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, सब बाहर में है, कोई उनको दाह संस्कार करने वाला नहीं। महाराज वशिष्ठ बोले इनके शव को कड़ाह में तेल भर करके उसमें भी डुबा करके रखो, अभी भट शत्रुघ्न को बुलाया जाए उनके ननिहाल से और तब इनका दाह संस्कार हो, इसके बाद में और कार्य।
ट्रांसलेशन
ओ यस
So one time the demigods they approached Maharaj Dashrath and they told him that there was a ferocious fight going on between the demigods and the demons, and they requested Maharaj Dashrath to come and fight on their side. So Maharaj Dashrath agreed and went to the heavenly planets and started fighting with the demons. While fighting, the axis of the wheel on the chariot broke. And at that time, Queen Katai, she picked up the axle and put her finger through it. And as a result, Maharaj Dashrath did not come to know, and the chariot kept moving, and he won the battle. After that, when he came to know that what Queen Katai has done, he became very, very happy and asked her to request two boons. And why did he say two boons? One was because she had protected him, and the second one was because of this he had become victorious. So he requested her to ask for two boons. So she said, "You are my husband, and I have done this only for your happiness. I don't need any boons." But he insisted, "No, you should ask for something." So he said. So she said, "Okay, I will keep this for the future." So they came back to Ayodhya, and at one time before. After this time, Lord Ram had appeared, and before he went to Janakpur and before he got married, one time he approached Kakai. He was actually the most beloved of Queen Kakai. Even though Bharat was her son, but she also used to love Sri Ram more, and Sri Ram also used to love her more than he used to love Kaushalya. So he went to Mother Kakai and sat in her lap and then said, "Oh mother, I want to ask you for something. It is very, very difficult, but still I want you to fulfill my desire." So she said, "What it is, whatever you want, I will give, even if I have to give up my life." So Sri Ram said that, "I want that when Maharaj Dashrath decides to give me, because he was the eldest son, decides to give me the kingdom, at that time you should approach him and ask him that he should banish me to the forest for 14 years and that Bharat should become the king." When she heard this, she became very, very disturbed. As if she completely fainted, and she said, "Sri Ram, how can I do this? I cannot do this. Do you want to give me poison? This is like drinking poison." So he said, "Mother, I told you that this is very difficult, but if you do not help me by asking this, then I would not be able to fulfill my mission on this, in this leela of killing the demons and protecting the saintly persons." So as a finally, Queen Kunti, Mother Kakai, she agreed. And so Gurudev is saying that this is real love, that he was the most dear, the dearmost for her, and for him, she agreed to do this great sacrifice. So this is real love. So when the time came, then Maharaj Dashrath wanted to give the throne to Sri Ram, and he asked Vashishthi that what is the auspicious time. And he said, "Oh, tomorrow only is the auspicious time, so we should do this tomorrow itself." So Maharaj Dashrath was very happy, and then he ordered everyone to make all the arrangements. And he also announced in his assembly that tomorrow Sri Ram will be crowned as the king. So at that time, Bharat had gone to his maternal, to his grandparents' home. Kakai, she had a maid servant whose name was Mantra. And when she came to know this, she approached Kakai and said, "Do you know what is going to happen? Maharaj Dashrath has announced that Sri Ram is going to become the king. Do you know what this means?" If he becomes a king, then Kaushalya will become more powerful. And throughout the rest of your life, you and Bharat will have to live as their slaves. But when Kekayi heard this, she said, "Oh, you are so foolish. You always think like this. Actually, this is such a happy news. I am so happy that Sri Ram is going to become the king." Then Mantra said, "I know you from childhood, that you cannot think in the future and you are very durbut, you are very foolish." So like this, she tried to give her so many wrong logics. And finally, Kakai also remembered that what Sri Ram had, actually she had forgotten, but when Mantra was saying this, then she also recalled that how Sri Ram had come and asked her to ask for these two boons. So she also then finally started behaving as if she had come in the trap of Mantra. So then what she did, she gave up her royal clothes and wore some tattered clothes, gave up all her jewelry, and then went to Kok Bhavan. So this is a place in the palace where when the queens were very upset, they would go and sit there. So she went to this Kok Bhavan, and in the evening Maharaj Dasharatha came, and he also used to love Kakai a lot. So he came to tell her the good news, but he found that she was not there. So he asked all the people there, all the servants, "Where is she? She is gone to Kok Bhavan. Why she is gone to Kok Bhavan?" So he went there and saw that she was sitting there in a very furious, despondent mood. So in a very sweet words, he inquired, "What, my dear queen, what has happened?" So at that time, she said, "Oh, you have decided to give the kingdom to Sri Ram and you want me to become the slave of Kaushalya for the rest of my life." So like this, she started saying to Maharaj Dasharatha. So Maharaj Dasharatha said, "Oh, this is a very good news." She said, "This might be good news for you, but for me, this is not good news. So either you decide to give me the two boons now that I asked for, or otherwise I will give up my life." So at that time she asked for the two boons to banish Sri Ram to the forest for 14 years and to make Bharat the king. When Maharaj Dasharatha heard this, he was heartbroken. As if all these great plans he had made, nothing was going to happen. His cherished desire to see Sri Ram as a king would not be fulfilled. So he was very, very disturbed and he fainted. He also, so in so many ways, tried to pacify Kakai, to cajole her. He fell at her feet, but she would not listen to whatever he was saying. So finally he fainted. Seeing this, Kakai sent some maid servants to go and get Sri Ram. Sri Ram at that time was in the palace of Queen Kaushalya, Mother Kaushalya, asking her for blessings. So Mother Kaushalya had made a plate of aarti to greet Sri Ram, but this aarti plate fell from her hands. So she was thinking, this is something very bad that is going to happen. Sri Ram had also gone to Sita Devi and asked her that tomorrow you should fast and then bathe because we both have to be crowned as a king and the queen. So like this, he was also making all the preparations. At that time, this maid servant came and said, "Oh prince, Maharaj is calling you." So he went there, and when he went to the Kok Bhavan, he saw that Maharaj Dasharatha was crying bitterly, and his condition was as if he was going to die right now. So he was not in the condition to speak. So he asked Kakai, "What has happened, mother?" So she said, "I had asked for two boons that he had promised me a long time ago, and I had asked him to send you to the forest for 14 years and to make Bharat the king. And as a result, this has become his condition. And why did he plan to make you the king now? He had sent Bharat to his grandparents' home, and in his absence, he was making all this plan to make you the king. If he wanted to do this in a transparent way, he should have made his announcement when Bharat was right here. So all of this, he's trying to hit me from the back, stab me in the back." So like this, she was saying. So Sri Ram said, "Oh, mother, you should have just told this to me. why did you have to disturb the father? This is actually very good news. Since when I was a child, from the beginning, we have all grown together, all the four brothers. And so many times I would think that all four of us should become the king. And now by your blessings, that is going to happen. I am very happy to go to the forest and Hara should become the king. Actually, I am very, very pleased with this. So next day, he decided to leave for the forest, and Sitaji and Lakshmanji also decided to accompany him, and he took the form of Vanvasis to give up all his royal clothes and wear just like mendicants. He wore the clothes. And Kekai at that time was manifesting this pastime of becoming very stone-hearted person. And she even asked Sitaji to wear such clothes. Even she gave up all her royal dress and dressed like mendicants. And they went to the forest, and once Sri Ram left, Maharaj Dashrath, he could not take the separation. He could not. And saying, Haram, Haram, he left his body. But at that time, Bharat was not there, and Shatrughan was also not there, and Lakshman and Sri Ram had gone to the forest, so none of the sons were there. So his final rites could not be performed. So Vashishthi said that his body should be kept in a big pool of oil, and only when Bharat comes, only then the final rites could be performed.
Bharata Shatrughan, Kaikeyi ke ghar, ननिहाल में गए हुए थे। राजा का पुत्र परलोक हो गया महाराज दशरथ का। राम लक्ष्मण सीता वन में चले गए। महाराज महर्षि वशिष्ठ जी ने दूत भेजा, भरत के पास में जल्दी से आ जाओ, बहुत आवश्यक कार्य है।
गुरु जी बुला रहे।
वहां से भरत जी और शत्रुघ्न जी अपने मामा से आदेश लेकर और अयोध्या नगरी में आए। जब अयोध्या नगरी में आए तो पहले नगर में प्रवेश करते ही उनका बड़ा स्वागत होता था। आज किसी ने उनका स्वागत नहीं किया था, न उनसे कुछ बातचीत किया, बल्कि उनको देख करके सब उल्टे अपने अपने काम में बड़े दुख से चले गए। ऐसे मालूम होता था, भरत ने देखा, आज तो ये नगरी विधवा हो गई है, कोई उल्लास नहीं देख रहे हैं। नगर में जो आनंद था पहले होता था वो भी नहीं है। राम तो हमारे स्वागत के लिए आते किंतु वो भी नहीं आए, क्या कुछ बात है अनहोनी। भीतर प्रवेश किया और कैकेयी के घर में पहले गए, क्योंकि महाराज दशरथ वहीं पर रहा करते थे अधिकतर कैकेयी के पास में, इसलिए राजा से मिलने के लिए पहले गए। उनको प्रणाम करके तब और सब काम करेंगे। तो वहां गए कैकेयी के भवन में, तो वहां देखा वो तो कैकेयी विधवा के रूप में है, सिंधु भी नहीं है और सफेद कपड़े पहन करके खड़ी है। कहे मैया, पिताजी कहाँ है? पिताजी तो परलोक सिधार गए। भैया राम कहाँ है? तो वो तो वनवास गए। किस लिए? तुम्हारे लिए, केवल तुम्हारा भविष्य देख करके तुम राजा हो, इसलिए मैंने राजा से दो बार मांगा कि एक बार मैं रामचंद्र 14 वर्ष के लिए बन जाए, दूसरे बार से मांगा कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो। रामचंद्र जी तो बन चले गए, और इधर राजा भी राम के शोक में हाराम 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 कहते हुए परलोक सिधार गए। बेटा जो कुछ किया है मैंने तुम्हारे लिए किया है। भरत जी सुनते ही सन्न रह गए और आंखों से आंसू गिरने लगे। आज से तू मेरी माँ भैया नहीं है, यदि राम भैया मुझ पर क्रोध नहीं करते तो आज तुम्हें तलवार से काट दिया होता। खैर तलवार से तब तुम्हें नहीं काटूंगा, किंतु याद रखना अब से तुम्हारी और मेरी माता और बेटा का कोई संबंध नहीं रहा। आज से मेरे लिए तुम महारानी कह कही रहेगी, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम हमको अपना पुत्र मत मानना। कह कही दे करके जिसके लिए मांगा हमने राज्य, और वो ही ऐसा हमारे लिए कह रहा है। और यह कह करके इतने में कुबड़ी आई, जैसे बड़ी प्रसन्न हो करके, शत्रुघ्न जी इसी के कारण इसने मंत्रणा दे करके सलाह दे करके कराया, इसलिए उसको जमीन पर गिरा करके लात से मारा। भरत जी ने कहा जैसे स्त्री नहीं होती तो कोई बात नहीं थी, स्त्री है इसलिए इसको जान से मत मारो, नहीं तो राम भैया प्रसन्न होंगे। छोड़ दिए, मैया कौशल्या के पास में गए और वहां जाते हुए कहा जी मैया तुम हमको क्षमा करना, मेरा इसमें तनिक भी हाथ नहीं है, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता हूं, हमारा कोई दोष नहीं है। कौशल्या बेटा मैं तुम्हें जानती हूं, तुम्हारा कुछ भी बात नहीं है। फिर राज्यसभा में आए और राज्यसभा में आकर के पिताजी का दाह संस्कार किया, और फिर राज्य सभा में मंत्रियों को और नगर वासियों को बुलाया और वशिष्ठ जी से पूछा जी महाराज हमारा क्या कर्तव्य है बतलाइए, मुझे क्या करना चाहिए। बेटा राज्य तो तुमको पिताजी दे ही गए हैं, अब राज्य को संचालन करो 14 वर्ष के लिए। भरत बोले ये मेरे लिए नहीं हो सकता है, बड़ा भाई राज्य का अधिकारी होता है, मैं राम को कल मनाने के लिए जाऊंगा सारी सेनाओं के साथ में, और कौशल्या मैया सुमित्रा मैया को लेकर के आप चलेंगे और सारी प्रजा चलेगी, वहीं पर हम चलेंगे और उनको किसी प्रकार से मना करके लाएंगे और उनको किसी प्रकार से राज्य दे देंगे, मैं उनका सेवक बन करके उनकी सेवा करेंगे। सवेरा हुआ और सारी लेकर के सेनाओं को वहां गए, चित्रकूट पर उनको पता था, चित्रकूट गए, उधर लक्ष्मण देखा जैसे सारी सेनाओं के साथ में भरत आ रहा है, आराम से युद्ध करने के लिए शायद आ रहा है, पेड़ पर से चढ़ करके देखा और फिर उतर करके धनुष बाण लिए और लेकर के बड़ी जल्दी से निकल रहे थे। राम ने पूछा जी कहां जा रहे हो, अरे भरत आ रहा है राज्य को हड़पने के लिए, तुम्हें मारने के लिए, हमें मारने के लिए आ रहा है, मैं उसे आज जरूर मारूंगा, चाहे ब्रह्मा विष्णु भी उसकी रक्षा करे उसकी रक्षा नहीं होगी, हम तो उसे आज मारेंगे ही किसी प्रकार से। सोच विचार करके काम करो, धैर्य धारण करके देखो वो आकर के क्या करता है, देखना यदि हमसे लड़ाई करना चाहता है तुम उसे मार डालना, उसको देखो तो सही। भरत जैसा भाव भूतल में नहीं है, हमारे प्रति उसका जैसा भातृ स्नेह है वैसा किसी को नहीं है, उसे आने दो देखो ये क्या करता है। उनको शांत करके बैठाया, भरत चित्रकूट के नीचे ही सारी सेनाओं को वही रख दिया और महर्षि वशिष्ठ और दोनों माताओं को लेकर के जब वहां से आ रहे थे भरत जी, तो कैकई कौशल्या मैया के पास में गई, बोली जैसे बहन मैं भी साथ में चलना चाहती हूं। ना जी ठीक है चलो, जब चलने लगी तो भरत जी ने कहा जी किस लिए जा रही है, तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं है, किंतु मैया कैसे कैकई कैकई बोली मैं चलूंगी, और जो मैंने दो वरदान के लिए वर मांगा था मैं वर से उसको निष्कृति देंगी, जैसे मैंने ही वर मांगा था आज मैं ही वर वापिस लेती हूं, तुम लौटो। उनको भी साथ में ले गई, वो भी गई। उस समय रामचंद्र जी अपनी चित्रकूट की कुटिया में बैठे हुए थे सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में, सारी जबकि ऊपर में आए तो राम और भरत जी का दोनों का मिलाप हुआ और पिता का समाचार सुना, जब पिता तो मेरे लिए हा राम कह करके पधार गए हैं परलोक में। फिर दूसरे दिन उनका श्राद्ध और उनका पिंडदान किया। इसके बाद में बड़ी सभा बैठी, भक्त भी बैठे, सब लोग बैठे। इतने में महाराज जनक वहां पर उपस्थित हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, आज हमारा बोझ कुछ इन्होंने हल्का कर दिया, महाराज
जनक जी ने।
एक तरफ में सभा में रामचंद्र जी बैठे, लक्ष्मण जी, सीता जी एक तरफ में, दूसरे तरफ में भरत, तीसरे तरफ में मैया और वहां के सभासद, और चतुर्थ तरफ में ऋषि महर्षियों की एक बड़ी भारी सभा लगी। वशिष्ठ जी उठ करके बोले, आज सूर्य वंश का नाव डूब रहा है, उसकी नाव को बचाने वाला कोई नहीं है, मैं भी असमर्थ हूं। आज हम लोगों का सौभाग्य है, महाराज जनक विदेह अभी आ गए हैं, अब इस नाव का पतवार उनके हाथों में है, वो कैसे रक्षा करते हैं ये अब उनको देखना है। जनक जी बीच में बैठे, उन्होंने राम की तरफ में देखा। राम, हम जो कहेंगे मानेगा? आप जो कुछ कहेंगे, आप पिता भी हैं, गुरु भी हैं, मानूंगा। भरत की तरफ में देखा, मैं जो निर्णय दूंगा तुम्हें उसे मानोगे? अवश्य ही, आप ही हमारे गुरु और पिता भी इस समय हैं, पिताजी के नहीं रहने पर जरूर मानूंगा। तब उन्होंने अपने गुरु का स्मरण किया। उनके गुरु जी सदाशिव शंकर जी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं, हमारे मुख से जो कहेंगे वो गुरु के ही कहेंगे शंकर जी, और तुम दोनों को मानना पड़ेगा। अपने गुरु को प्रणाम करके बोले, देखो भारत का प्रेम महासागर के समान है, अतल है, और रामचंद्र जी का धर्म पालन हिमालय के समान है,
अटल
है। जितना भी पानी में डूब जाएगा किंतु तस से मस नहीं होगा। भले ही रामचंद्र जी हिमालय हो, कि आज भारत के प्रेम की जीत है, भारत की जीत हुई। सुनकर के सभा के सारे लोग आनंद हो गए, और सोचा जी अयोध्या का राज्य रामचंद्र लेंगे, भरत भी लेकर के बहुत प्रसन्न हुए, माताएं भी प्रसन्न हो गई। इतने में महाराज जनक बोले, देखो भरत की जीत हुई, प्रेम की बात तो ठीक है, किंतु प्रेम का भी एक नियम होता है, प्रेमी क्या चाहता है यस उस प्रेम करने वाले को विचार करना पड़ेगा। अर्थात भरत को विचार करना चाहिए, हमारा इष्ट देव जो है किस बात से वो प्रसन्न होगा वही चाहे करेगा। अब भरत बोले, रामचंद्र जी से पूछो, जो तुम्हारा इष्ट देव रामचंद्र है, किस बात से प्रसन्न होगा अयोध्या का राज्य लौट करके लेने के लिए या वनवास के लिए, आप उससे पूछो किस विषय में। तो भरत जी ने कहा, आ आज मेरी आंखें खुल गई। हमारे जनक जी गुरु हैं। अब तक मैं अपने प्रसन्नता की बात सोच रहा था, मैं किस में प्रसन्न रहूंगा, ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? हमारा इष्ट देव क्या करना चाहता है उससे हम प्रसन्न रहेंगे। उन्होंने रामचंद्र जी से कहा, जी भैया तुम किस में प्रसन्न हो? कह जी प्रसन्नता की अब तो कोई बात नहीं रही। महाराज जनक ने जो निर्णय दिया है, तुम्हारी प्रेम की जीत हुई। मैं अयोध्या का राज्य मैं स्वीकार करता हूं, किंतु प्रतिनिधि के रूप में तुम अयोध्या लौट करके 14 वर्ष तक उसकी सेवा करो। राजा का मैं राजा हूं, तुम मेरा प्रतिनिधि बन करके रहेगा और तुम फिर राज्य करो, राज्य का देखभाल करो। 14 वर्ष के बाद मैं आऊंगा तो मैं राज्य ले लूंगा। भरत जी ने कहा, जी ठीक है, 14 वर्ष के बाद में एक दिन का भी विलंब हुआ, दूसरे दिन तुम हमको नहीं देख सकोगे। रामचंद्र जी ने भरत जी को छाती से लगा लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो, एक मिनट का भी विलंब नहीं होगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। भरत जी ने उनसे पैरों की खड़ाऊ मांगी। मैं नहीं, ये खड़ाऊ आपका प्रतिनिधि रहेगा, राज्य होगा, राज्य करेगा, ये खड़ाऊ। और उसको सिर पर लेकर के रामचंद्र सीता को प्रणाम करके और उनसे आदेश लेकर के अयोध्या लौट गए। और
ट्रांसलेशन
14 वर्ष तक रहे वन में। 14 वर्ष के बाद में किस प्रकार से रामचंद्र जी रावण को मारकर सीता को लेकर के अयोध्या विमान से आए और किस प्रकार से लौटे, वहां नंदीग्राम में गए और वहां से सब लोग आए। भरत जी अब तक साथ थे। जो ही राजमहल में रामचंद्र जी ने प्रवेश किया, अभी राज्य तिलक नहीं हुआ था, जो ही राजमहल में प्रवेश किया सबसे पहले कैकेयी के भवन में गए। जब कैकेयी के भवन में पहुंचे तो देखा जब भरत तो है नहीं, भरत कहां गया? लोगों से कहा, जब पूछो देखो तो भरत कहां गया। भरत जी ने तो कह दिया था, जे उसे हमारा माता का कोई संबंध नहीं है, तू मेरी माता नहीं है, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, इसीलिए वो शायद चला गया। भरत को बुलवाया और कहा, उनके चरणों में प्रणाम कराया, अपने पहले प्रणाम किया कैकेयी माता को और फिर भरत से कहा, तुम माता को प्रणाम करो मेरे आदेश से और बोलो ये मैया। अब तो कैकेयी रोने लगी फफक फफक कर करके, सारे लोग देख करके रोने लग गए, आप लोग मत रोएंगे, यह कैकेयी का महान चरित्र, भरत का भी महान चरित्र है, किंतु उनको विष का घूंट नहीं पीना पड़ा और इसको घूंट किसी से नहीं कहा न बतलाया, जे इसलिए हम लोग कैकेयी मैया को प्रणाम कर रहे हैं। भरत का चरित्र भी महान है, मेरी इच्छा थी कि उसको भी कहेंगे, किंतु अभी समय नहीं है, आज यहीं पर मैं अपनी राम कथा का विश्राम देता हूं।
So, Bharat ji and
Bharatmilan drama
has gone to Nanihal. So, Vasishthi
is going to Bharatmilan drama.
Bharat ji he took permission from his maternal uncle and his parents and came back.
क्या हुआ? क्या कहता है? उठो, क्या कहता है? व्हाट टेलिंग?
नहीं,
बोलो
ना, और आंखें भरे आस्ते बोलते
हैं। His voice is choked.
So he came back, and when he entered the city, he saw that before when he would come, there would be all the people who would be there to receive him. But today, the whole city looked like as if it was a widow. There was no joyful celebration, and there was no one to greet him. So he felt that something very bad had happened. So first he went to Mother Kakai's palace, because normally Maharaj Dashrath would be staying there. So when he went there, he saw that Kakai was also like a widow, and she was wearing white clothes, and there was no red sindoor she was wearing. So he asked her what has happened. So she said, "Oh, your father has expired, and your brother Shri Ram has gone to the forest." So he asked, "Why has this happened?" So she said, "Oh, because for your future, to secure your future, I had asked for two boons, that Shri Ram should go to the forest and that you should become the king. And whatever I have done, I have only done, oh my dear son, I have only done for your good." So when Bharat heard this, he said, "Oh mother, you are not my mother from now on." And he became very upset. And he said, "Only because I am scared that if I kill you, Shri Ram will be upset. And only for that reason, I am not killing you. But from today, you and me don't have a relationship of son and mother. From now on, for me, you are only a queen, but not a mother." So the queen, Kakai, thought, "Oh, for whom I have asked this boon, even my son has rejected me." So at that time, Mantra came. And Shatrughan, when he saw this, he said, "Only because of her, this whole thing has happened." So they pushed her down to the ground and hit her. But Bharatji said, "Kick her." And Bharatji said, "Oh, please leave her. Because if we kill her, then Shri Ram will be very upset." So they left her like that. So Mother Kakai said, "Oh, I have done only this for you, but Shri Bharat just left from there," and he went to the assembly, and there he asked what he should do. He performed the last rites of his father, and then asked Guru Vasishtha that, "What is my responsibility? What is my duty now?" So Guru Vasishtha said that, "Since your father has ordered, you should now take care of this kingdom for the next 14 years. But Bharat said, "This is not possible for me. I cannot, this kingdom belongs to Shri Ram, and I cannot be the king of this. I will take my entire army. Every one of us would go, all the people in the assembly, and somehow or the other, we will bring Shri Ram back. And I will give this kingdom back to him, because this belongs to him only, and I will just serve him as a servant." So, right in the morning, they all left from Ayodhya, and they went to Chitrakoot. Lakshman saw this huge army coming, and he felt, "Oh, Bharat is coming to kill." So he immediately got ready to fight. So Shri Ram said, "What is happening? Why are you getting ready to fight?" So he said, "Oh, Bharat is coming. First he made us leave, and now he's coming to kill, so there would be no problem in the future." So he said, "Today when Brahma and Vishnu, if they come to protect him, still I am going to kill him." So Shri Ram said, "Please be patient. We should not take any action hurriedly. We should think about it, consider, and then make some decisions let Bharat come. And if he wants to fight, then you should certainly fight with him and kill him. But I can tell you that there is no one on this planet like Bharat. His love for me is the highest. And there is no one like this who is a symbol of brotherly love as Sri Bharat. So the entire army, they stay at the foothill. Chitrakoot is a hill. So at the foothill, the rest of the army stay. And at that time,
when I should finish class,
along with Kaushalya and Sumitra and Vashishthi and some key persons,
no Harikatha,
to go after him. At that time, Kakai also said that she would like to also like to accompany. So, so mother, she said, Bharat said, why? She asked Kaushalya. And Kaushalya agreed, okay, you can also come. But when Bharat saw this, he said, why are you coming with us? So she said, oh, I only asked him to leave.
Abhi,
now I am going to take
to stop
my two things
Harikatha
back,
and to start drama play.
And be the king. So then they went to the cottage of Sri Ram. And there Sri Ram and Bharat, they met. There is a beautiful description of this in Sri Ramcharitmanas and Ramayana. So Bharatji gave the news of the father passing away. So at that time they performed Shraddh and other ceremonies. And at that time Maharaj Janak also came. And when Vashishthi saw this, he was very happy. And he said, oh, now the burden on my shoulders has been taken off.
You understood something?
A person has come. So next day, pathetic. The morning, a big assembly was there. On one side, Sri Ram, Sita Ji and Lakshman sat. On the other side, Bharatji and other brothers and the other key people from their assembly sat, and from the court sat. And then on one side, the mothers were there, and on the fourth side, the great rishis and sages. So it was a big assembly. So Vashishthi said at that time that it seems that the boat of Surya Vansh of this Sun dynasty is going to sink now, and I don't have the capacity to rescue it. It is our great fortune that today among us, Maharaj Vashishth is here, Raja Janak is here. So I would request Raja Janak, King Janak, to help us. So at that time, King Janak, he looked at Sri Ram and said, whatever I ask you to do, will you listen? Will you agree? He said, you are like my father and my guru. So whatever you say, instruct, I will do it. And then he asked the same thing from Bharat, and he also said that whatever order you give me, I will accept. So King Janak said, my guru, his guru is Sadashiv. And meditating and praying to his Gurudev, he said, see, the love of Bharat is like a Mahasagar, a huge ocean. And the dharmapala, the maryada of Sri Ram, his decision to follow the rules and regulations and the order of his father is just like the Himalaya mountain. And both of them are in their own way. It is utter. It cannot be moved by any way. But I consider that in this fight between the ocean and the mountain, the ocean has won. So Bharat's love is so deep that ultimately love is more important than any kind of maryada. So he said that I think Bharat is the winner. So at hearing this, Bharat and everyone else was very, very happy that this is finally, this is the victory of love, and now Sri Ram will come back and will become the king. So, but he said there is one more consideration that we should think that in love, what is real love? In the love, the person should think that what does my beloved want? That consideration should be there. So Bharat should think that his Ishtadev, Sri Ram is worshipable for him. So what does Sri Ram want? So ask him, by what will he be happy? By taking the kingdom or by going to the forest? So Bharat asked Sri Ram, that please tell me, by what would you be happy? Now my eyes have opened. So far I was thinking only of what would make me happy. But now I understand that I have to do what would make you happy. So Maharaj Janak is like our guru, and I have accepted what he has explained. So Sri Ram said that King Janak has already given his order and I will accept it. So I accept the kingdom of Ayodhya. But as a king, I am now ordering you that you should take care of the kingdom for the next 14 years as my representative. So Bharat, he agreed to accept the order of Sri Ram, and he said, please come back at the end of 14 years. If you delay even by 1 minute, then I will give up my life. So, and he, as Sri Ram's representative, he took his kharam, which are wooden sandals, and keeping on his fourth head, he went to Ayodhya, and on behalf of Sri Ram, took care of the kingdom for the next 14 years. So Sri Gurudev concludes that finally, when Sri Ram came back to Ayodhya after 14 years, he first went to the palace of Queen Mother Katai, and there he saw that Bharat was not there. So, because Bharat had left, he was living outside, and he had already rejected his mother. He was not going to her. So Sri Ram called Bharat and told her that you should fall at the feet of your mother and say Maya to her. So, and then Katai started crying very bitterly. So, and everyone started crying, and Gurudev said, you should not cry, even though they were not crying. So, this Gurudev says that this is such a great charitra of Katai. We pay our obeisances at her lotus feet for the great sacrifice she did so that Sri Ram could manifest his pastimes. And like this, Bharat charitra is also very glorious. But today we don't have time, so some other time we will describe it.
Drama play.
So today, Sri Gurudev narrated this beautiful pastime, and the drama is also going to be on this pastime of when Bharat comes and meets Sri Ram. So please make some space here so Gurudev can come down here.
At once.
Everyone else can also come down. And
Hare Krishna. During morning walk, we like to participate morning walk. But after morning walk,
Yes.
Allowed. Due to three arrangements of Mr. Verma and Mrs. Verma, they have their family program in the house. So after morning walk, please move from there. Don't pass inside the house. If somebody is not in the house,
also, there's a couple of other announcements. There are many devotees, as we are still in the middle of the festival and we don't want the festival to end, but because of passage of time, it is going to end, and a lot of devotees would be needing help to go back to the airport on Friday, on Saturday. So those who want a shuttle service back to the airport, please give your names by tomorrow to Pran Govinda Prabhu or Roy Krishna Prabhu. Please give your, because otherwise if you come at last moment, we will not be able to make arrangements. Please give your name by end of tomorrow to Pran Govinda Prabhu or to Roy Krishna Prabhu. Tomorrow's program. The morning class will be given on Mana Shiksha by Shripad Muni Maharaj. Hari Bol. And then at 10:30, Shyamarani Niji will be giving a class on Srimad Bhagavatam. And then at 3 p.m, Shripad Patmanabh Maharaj will be giving a class on Sri Shikshashita. Tomorrow also there will be a drama play on Ajamil, right? On Dhruva. So tomorrow we already heard the pastime of Dhruva Maharaj. Tomorrow there will be a
pastime
on it.
We need to move that all the way over there.
Which? There is one.
All the way over?
Other announcement. Many of the devotees here live in central Florida.
Let's do
and
this
there
first.
Is a nice program, TV program that
comes
on Bright House Network.
Straight back.
Channel 49. On Saturdays from 10 to 11 p.m. This program is being conducted by Sudarshan Prabhu. And it shows the lectures of Gurudev, there are bhajans, and Sudarshan Prabhu also sings.
So those devotees who live in Central Florida also can have brunch. They can watch this on Channel 49 every Saturday.
Nietzsche, Nietzsche.
Hare Krishna, as I mentioned, we will have a class on palmistry for people who are interested in Sri Mataka. That is scheduled to be on Thursday, 7 to 8. Thursday evening, 7 to 8. Yes, today is Tuesday.